ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी आज ब्राजील में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला द सिल्वा द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। श्री मोदी के G20 शिखर सम्मेलन से इतर कई नेताओं से मिलने की भी उम्मीद है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबु ने अबुजा में राष्ट्रपति भवन में बातचीत की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच कार्यनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। दोनों नेताओं की बैठक के बाद प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को और भी आगे बढ़ाने की अपार संभावना है। राष्ट्रपति टिनुबु के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत नाइजीरिया के साथ अपनी कार्यनीतिक साझेदारी को उच्च प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने इस सम्मान को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए कहा कि यह सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि भारत की जनता का भी सम्मान है। भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नाइजीरिया यात्रा है। उन्होंने कहा कि भारत नाइजीरिया के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत के लिए मानवीय सहायता के तौर पर 20 टन सामग्री भेज रहा है। उन्होंने नाइजीरिया को ब्रिक्स का भागीदार देश बनने पर बधाई दी। श्री मोदी ने भरोसा जताया कि भारत और नाइजीरिया ग्लोबल साउथ के मुद्दों को विश्व मंच पर उठाते रहेंगे। इससे पहले स्टेट हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का 21 तोपों की सलामी के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों देशों के बीच 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते सांस्कृतिक आदान प्रदान, सीमा शुल्क सहयोग और सर्वेक्षण सहयोग से संबंधित हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में नाइजीरिया के राष्ट्रपति की ओर से राजकीय भोज का आयोजन किया गया। श्री मोदी ने कहा कि अफ्रीका के साथ घनिष्ठ सहयोग भारत के लिए उच्च प्राथमिकता रहा है और अफ्रीका में नाइजीरिया की बड़ी और सकारात्मक भूमिका रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत और नाइजीरिया दोनों देशों और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया की 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार रात अबुजा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। नाइजीरिया में रह रहे मराठी समुदाय ने मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए श्री मोदी को धन्यवाद दिया। अपने दौरे के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 19 से 21 नवम्बर तक गुआना की राजकीय यात्रा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार श्री शाह आज इस मुद्दे पर विस्तृत बैठक करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2 समुदायों के बीच उपद्रवी हिंसा में कई लोगों की मृत्यु हुई और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हुई। मंत्रालय ने कहा है कि हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच मणिपुर में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने वीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनराड संगमा ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को इसकी जानकारी दे दी है। असम के कछार जिले में बराक नदी से कल एक महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार ये शव सोमवार को कुकी चरमपंथियों द्वारा अगवा किए गए 6 लोगों में से एक का हो सकता है। इस बीच राज्य के गृह विभाग ने जीरीबाम और फेरजौल जिलों में इंटरनेट और डेटा सेवाएं 2 दिन के लिए बंद कर दी हैं। यह कदम सोशल मीडिया पर अफवाहों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के 2रे चरण और महाराष्ट्र में एकल चरण में मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। दोनों राज्यों में 20 नवंबर बुधवार को मतदान होगा। झारखंड में मतदान के 2रे चरण में 38 सीटों पर जबकि महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इसे देखते हुए आज सुबह 8 बजे से दिल्ली में ग्रैप स्टेज 4 लागू कर दिया जाएगा। ग्रैप स्टेज 4 के तहत दिल्ली में दूसरे राज्यों से भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि आवश्यक वस्तुओं ले जाने वाले, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली NCR में आज सुबह से लागू ग्रैप स्टेज 4 के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी छात्रों के लिए वास्तविक कक्षाएं बंद करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिश ने बताया कि अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।